यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
श्री हरि नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय हरे कृष्ण। आज रविवार के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 186 तरको प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था तरको प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नास ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था तरको प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नास ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था। शब्दार्थ तर्क शुष्क तर्क अप्रतिष्ठ अनिर्णित श्रुतय वेद विभिन्न विभिन्न मतों वाले न नहीं असो वह ऋषि ऋषि यस्य जिसका मतम विचार न नहीं भिन्नम अलग धर्मस्य धार्मिक सिद्धांतों का तत्वम तत्व निहितम बसा हुआ है गुहायाम सिद्ध भक्त के हृदय में महाजनः स्वरूप सिद्ध पूर्ववर्ती आचार्य येन जिस रीति से गतः कार्य किया सह वह पंथा शुद्ध पवित्र मार्ग अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता उसे महान ऋषि नहीं माना जाता केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिससे धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है फलस्वरूप जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए तात्पर्य यह श्लोक महाभारत वन पर्व 313.117 से लिया गया है जिसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा है ये जो श्लोक है इसको चैतन्य महाप्रभु कोट करते हैं उद्गत करते हैं इससे पहले के श्लोक में शिला प्रभुपाद जी ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कोट करते हुए टीका लिखी है उसका थोड़ा सा भाग पढ़े धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार पूरी गोसाई रे आचरण से ही धर्म सार भक्त के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है माधवेंद्र पुरी गोस्वामी का आचरण ऐसे धर्मों का सार है तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर अपनी निम्नलिखित टीका दी है साधु व्यक्ति महाजन या महात्मा कहलाता है भगवद गीता में महात्मा की परिभाषा भगवान कृष्ण द्वारा इस प्रकार दी गई है महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम हे पार्थ जो भ्रमित नहीं है ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं वे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं भौतिक जगत में विभिन्न मतावलंबियों द्वारा महात्मा शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न रूपों में ग्रहण किया जाता है संसारी भी अपनी पृथक दृष्टिकोण रखते हैं इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वाले बद्ध जीव के लिए महाजन की मान्यता उसके द्वारा दी जाने वाली इंद्रिय तृप्ति के अनुपात के अनुसार होती है उदाहरणार्थ एक व्यापारी किसी बैंकर साहूकार को महाजन मान सकता है और भौतिक भोग की कामना रखने वाले कर्मीजन जैमिनी जैसे दार्शनिक को महाजन मान लेते हैं। ऐसे कई योगी हैं जो इंद्रियों पर नियंत्रण चाहते हैं, उसके लिए पतंजलि ऋषि महाजन है। ज्ञानियों के लिए नास्तिक कपिल, वशिष्ठ, दुर्वासा, दत्तात्रेय तथा अन्य निर्विशेष दार्शनिक महाजन है। असुरगण हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, मेघनाथ, जरासंध इत्यादि को महाजन मानते हैं। भौतिकतावादी मानववादियों के लिए जो शरीर के विकासवाद के मानने वाले हैं, डार्विन जैसा व्यक्ति महाजन है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी उसका आगे वर्णन करते हैं। ऐसे महाजनों का आदर कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। सोविट वरहो स्त्र खरे संस्तुत पुरुष पशु न यत कर्ण पथो पेते जातु नाम गदाग्रज। ऐसे व्यक्ति जो कुत्तों, सुअरों, ऊंटों तथा गधों की तरह हैं, वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो बुराइयों से उद्धार करने वाले श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को कभी भी नहीं सुनते। तात्पर्य बहुत लंबा है, थोड़ा सा उसमें से। भक्ति रहित लोग कभी कभी भौतिक स्वार्थों वाले व्यक्तियों को गलती से महाजन मान लेते हैं। एकमात्र प्रयोजन कृष्ण भक्ति होना चाहिए। कभी कभी सकाम कर्मी, शुष्क दार्शनिक, अभक्तगण, योगी तथा भौतिक ऐश्वर्य एवं कांचन कामिनी में आसक्त व्यक्ति महाजन मान लिए जाते हैं, किंतु ऐसे अनधिकृत महाजनों के विषय में श्रीमद् भागवतम का यह कथन है, प्रायेण वेद तदितम न महाजनोयम देव्या विमोहित मतिर्बत मायालम त्रय्या जड़ीकृत मति मधु पुष्पितायम वैतानिके महति कर्माणि युज्यमान। इस भौतिक संसार में सकाम कर्मी उन मूर्खों द्वारा महाजन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं जो भक्ति के मूल्य से अनजान है। ऐसे मूर्खों की सांसारिक बुद्धि और मानसिक तर्क वितर्क की विधियां भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण में होती हैं। फलस्वरूप वे शुद्ध भक्ति को नहीं समझ सकते। वे भौतिक कार्यकलापों से आकृष्ट होते हैं और वे भौतिक प्रकृति की पूजा करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे सकाम कर्मी के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक कार्यकलापों के स्वांग में दिखने वाले भौतिक कार्यकलापों में फंस जाते हैं। भगवद गीता में ऐसे लोगों को वेदवाद रता कहा गया है। वे वेदों के वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझ पाते, फिर भी वे अपने आप को वेदों के अधिकारी मानते हैं। वैदिक ज्ञान को समझने वाले लोगों को कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना चाहिए। वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो। नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्त ते करिया एक। मनुष्य को साधुओं, शास्त्रों और गुरु के शब्दों को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा महापुरुष साधु है। शास्त्र तो शास्त्रों के आदेश हैं और गुरु वह है जो शास्त्रों के आदेशों की पुष्टि करता है। इन तीनों के मार्गदर्शन को स्वीकार करना ही जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए महाजनों का सही अर्थों में अनुसरण करना है। महाजनों ये न गतः सपंथा। मोह से आवृत व्यक्ति को सही रास्ता नहीं सूझता। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। भक्त का आचरण अन्य सारे व्यवहारों के लिए आदर्श स्थापित करने वाला होता है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के नियमों का पालन किया और दूसरों को भी वैसा ही करने की शिक्षा दी। पुरी गोसाई रे आचरण सही धर्मसार। श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के आचरण का अनुसरण करते थे और अन्यों को भी उसका पालन करने के लिए कहते थे। दुर्भाग्यवश लोग अनंत काल से भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में अपने महाजनों का चुनाव करने के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके प्रतिनिधियों का अनुसरण करना होगा। उनके अगले प्रतिनिधि हैं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। फिर आते हैं छह गोस्वामी, श्री रूप, श्री सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ। विष्णु स्वामी के अनुयायी श्रीधर स्वामी थे, जो श्रीमद् भागवतम के सुविख्यात भाष्यकार हैं। वे भी महाजन थे। इसी प्रकार चंडीदास, विद्यापति तथा जयदेव भी महाजन थे। जो व्यक्ति नकली गुरु बनने के लिए महाजनों की नकल करता है, वह महाजनों के पदचिन्हों पर चलने से कोसों दूर रहता है। कभी कभी लोग वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि एक महाजन अन्य महाजनों का अनुसरण कैसे करता है। इस तरह लोग अपराध करते हैं और भक्ति से विलग हो जाते हैं। ओम अज्ञान थिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
Svayam rupaha kadamahyam dadati svapadantikam Vandeyaham Shri Guru Shri Yutam Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathan Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyate Desha Tarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratushe Namaha Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Bhyevacha Vaditanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna. मैं सर्वप्रथम सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूं और उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूं क्योंकि श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ बोल पाना ये स्वयं की शक्ति से संभव नहीं है और विशेष रूप से ये जो श्लोक है और इसका जो तात्पर्य है बहुत ही गूढ़ है तो ये भक्तों के आशीर्वाद से ही संभव है कि इसके ऊपर हम कुछ चर्चा कर सकें विशेष रूप से राधेश्याम प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं राधेश्याम प्रभु 2002 में पहली बार मिला था प्रभु जी से तो मुझे प्रभु जी का उदाहरण और प्रभु जी के उदाहरण बहुत प्रभावित किए थे क्योंकि प्रभु जी का जीवन भी उदाहरण के तौर पर है और प्रभु जी जो प्रवचन में जो उदाहरण देते हैं वे इतने सटीक रहते हैं और इतने व्यवहारिक रहते हैं कि कुछ भी नहीं समझ पाना असंभव सब कुछ समझ जाते हैं तो इससे मैं बहुत प्रेरणा प्राप्त करके मैं भी भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ तो प्रभु जी के आशीर्वाद से कुछ यहाँ पर इस विषय में चर्चा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ तो ये जो श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में अपनी वृंदावन यात्रा के अवसर पर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर गए तो मथुरा पहुंचने के बाद उनकी भेंट एक सनाडिया ब्राह्मण से होती है और जब महाप्रभु कीर्तन में नृत्य कर रहे थे तो ब्राह्मण भी आकर के चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन में नृत्य करने लगा और महाप्रभु उनको देखकर समझे कि इनका संबंध अवश्य ही शिला माधवेंद्रपुरी से होगा अन्यथा इनके हृदय में इतना प्रेम कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो सकता तो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर उनसे वार्तालाप करते हैं और वो ब्राह्मण बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी जब वहाँ पर आए थे तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और मेरे घर पर भोजन ग्रहण किया तो क्योंकि सनाड्या ब्राह्मण रूपा जी कहते हैं कि वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि सन्यासी थे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे तो उन ब्राह्मण ने कहा कि हम आपको भिक्षा के रूप में अन्न इत्यादि देंगे आप उसको पका कर जो बलभद्र भट्टाचार्य साथ में थे उनको पका कर आप भगवान को अर्पण कर ग्रहण कीजिए लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सुना कि शिला माधवेंद्रपुरी ने उनके घर पर भोजन ग्रहण किया था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्योंकि श्रील माधवेंद्रपुरी महाजन है, उन्होंने आपके घर पर भोजन ग्रहण किया है, उनका जो आचार है, उनका जो व्यवहार है, वही साक्षात धर्म है। पूरी गोसाई ने यह आचार सर्वधर्म सार, ये धर्म का सार है, क्योंकि धर्म की स्थापना एक वैष्णव के आचार के माध्यम से होती है, वैष्णव के व्यवहार के माध्यम से होती है। तो क्योंकि उन्होंने भोजन ग्रहण किया, इसलिए हम भी आपके यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे। आप भोजन ग्रहण, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को उद्गत करते हैं। इसका तात्पर्य पिछले श्लोक में ही शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कोट करते हुए शिल प्रभुपाद जी ने लिखा है कि किस प्रकार से जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी का अनुयायी बनता है। प्रभुपाद जी ने लगभग 15 अलग अलग उदाहरण दिए हैं। कोई व्यापारी बैंकर को महाजन मानता है, भौतिकतावादी लोग डार्विन को महाजन मानते हैं, वैज्ञानिक लोग बड़े वैज्ञानिक को महाजन मानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति का स्वभाव है कि हर व्यक्ति किसी न किसी का फॉलोअर बनता है, किसी न किसी का अनुयायी बनता है। ये हमारी संवैधानिक दृष्टि से एकला ईश्वर कृष्ण और सब भक्त, क्योंकि एक ईश्वर केवल कृष्ण है और सब उनके दास हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर ये भाव रहता है कि हमें किसका अनुयायी बनना है। और आज के समय में तो कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग कितने प्रकार के हीरो बन देते हैं, कितने प्रकार के लोगों के फैन बन जाते हैं और उनके अनुयायी बन जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और कहने लगा कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी ने ये पुस्तक लिखी है कि किसी की अथॉरिटी को या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति का जो स्वामित्व है उसको नहीं मानना चाहिए, वन शुड नॉट फॉलो एनी अथॉरिटी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब ऐसा उन्होंने लिखा है तो उनकी शिक्षा का पालन करते हुए आप उनकी अथॉरिटी को क्यों मानते हैं? आर यू फॉलोइंग हिम हिज राइटिंग? तो इस प्रकार से हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किसी न किसी का तो अनुयायी बनता है। एक बार जब श्रीलंका में डिबेट चल रही थी, एक वैज्ञानिक के साथ एक डिबेट चल रही थी कि जीवन जीवन से आता है या फिर जीवन रसायनों से आता है, भगवान है या नहीं, उस प्रकार से। तो प्रभुपाद ने अंतिम पत्र में लिखा कि देखिए, हम जो भी चीज करते हैं, मानते हैं, उसके लिए किसी को हम अधिकारी स्वीकार करते हैं, किसी को हम पालन करते हैं। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु को अधिकारी मानकर उनका पालन करते हैं, उनको हम वरिष्ठ मानते हैं, उनको महाजन मानते हैं। और आप अगर किसी और को मानते हैं तो कभी हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम आचार्यों द्वारा दिए गए पथ के अनुसार, उनके मत के अनुसार, हम भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हैं और उनके जो भक्त हैं उनको महाजन मानकर उनका पालन करते हैं। तो अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो एक को अधिकारी मानना पड़ेगा। जैसे कि जब न्यायालय में जाते हैं तो दोनों वकील होते हैं, वे आपस में संवाद करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन जज एक तीसरा व्यक्ति होता है। अगर जज नहीं है तो दोनों लोग अनिश्चित काल तक बहस कर सकते हैं, कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए जब तर्क के माध्यम से धर्म को जानने का प्रयास किया जाता है तो तर्क प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्न, अलग अलग मत आते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर किसी ऋषि का मत भिन्न नहीं है तो वो किस प्रकार का ऋषि, मत भिन्न होना ही चाहिए। आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि अगर हम अलग अलग आयुर्वेदिक वैद्यों के पास जाते हैं तो सबका जो डायग्नोसिस है और सबकी जो मत है वो भिन्न होता है। कोई वैद्य कहते हैं कि दिन में 2 बार ही लेना चाहिए जिससे पाचन ठीक से होता है, कोई कहते हैं कि दोपहर में अग्नि सबसे ज्यादा रहती है, दोपहर में ही लेना चाहिए जब पाचन ठीक से होता है। तो इस प्रकार से मतों में भिन्नता होती है, उससे धर्म के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व इतना सरल नहीं है उसको समझ, ये वेदों को पढ़ने मात्र से नहीं समझा जा सकता है। बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते कोरे भ्रम, अगर ज्यादा कोई शास्त्र पढ़ता है तो भ्रमित हो जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व बांग्लादेश में जाते हैं और वेंकट भट्ट से मिलते हैं तो इतने शास्त्र पढ़े थे उन्होंने कि निष्कर्ष नहीं समझ पाए क्या साध्य है और साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना क्या है, इसका ज्ञान उनको नहीं हो पाया। तो हालांकि शास्त्र पढ़ रहे थे जिसमें भगवान का ज्ञान दिया गया है, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि ये गुहायाम है। भगवान भी कहते हैं गीता में 9वें अध्याय में, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सर्व गुह्य तमम ज्ञान। अभी कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि तो श्लोक खुले हुए हैं, सब पढ़ सकते हैं, और मैराथन में तो हम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, घरों में जाकर के गीता का वितरण करते हैं और श्लोक समझ में नहीं आता है तो प्रभुपाद जी का अनुवाद है, उसके नीचे तात्पर्य भी है, तो क्या वो गुह्य तमम? कैसे गुह्य तमम अर्थात जिसको प्राप्त करना बहुत दुष्कर हो, लेकिन हम उस
शब्दों को पढ़ सकते हैं, लेकिन शब्दों का साक्षात करने के लिए जो गुण चाहिए उन गुणों को हम वैष्णव के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए हालांकि शब्द हमको पता है, वाक्य पता है, लेकिन उनका साक्षात्कार तभी होता है जब हम एक वैष्णव के दास बनते हैं। जब हम तद विद्धि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवाया, जब करते हैं तब जो शब्द लिखे हैं भगवान ने या वैष्णव ने उनका साक्षात्कार आता है। इसीलिए धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायम, हालांकि ऐसा लगता है कि हमारी पहुंच में है लेकिन ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है। उसका साक्षात्कार का माध्यम केवल एक ही है, महाजनों ये ना यथा सपंत है। प्रभुपाद जी बहुत बहुत बार इसको कोट करते थे अपने प्रवचनों में, अपने राइटिंग्स में, कि मनुष्य जीवन महाजनों के पथ पर चलने के लिए दिया गया है। और महाजन कौन है, जैसा कि इसमें वर्णन आता है, स्वरूप सिद्ध पूर्ववर्ती आचार्य, यानी कि हर भक्त या हर व्यक्ति एक महाजन की श्रेणी में नहीं है। जो जो व्यक्ति भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवत धाम से आते हैं, कभी जो माया के जाल में नहीं फंसते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्राकृतिम आश्रम, वो माया देवी के या महामाया के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, जो योग माया के अंतर्गत कार्य करते हैं उन लोगों को महाजन कहा जाता है। महाजनों ये ना यथा सपंत, ऐसे भक्तों की शरण लेने से, ऐसे भक्तों की सेवा करने से, ऐसे भक्तों के आचरण का पालन करने से, सीख लेने से, तब व्यक्ति वास्तविक रूप से भक्ति पथ पर प्रगति करता है, उन्नति करता है। तो ये बहुत ही आवश्यक विषय है, क्योंकि आने वाला जो सप्ताह है 10 तारीख के बाद, उसमें कई सारे आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव दिवस आने वाला है। तो कल मुझे वॉइस में ऐसा क्लास देने के लिए बोला था कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका जो जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उससे क्या हमको लाभ मिलता है, तो उस विषय के ऊपर मैंने चर्चा की थी, उसी को मैं यहाँ दोहराने का प्रयास करूँगा। तो सर्वप्रथम तो भक्ति के मार्ग पर व्हाट विल मेक अस फ्लरिश एंड व्हाट विल मेक अस पेरिश, ये विचार हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए। किस चीज़ को करने से हमारी प्रगति होगी, किस चीज़ को करने से हमारी अधोगति होगी, ये एक भक्त के मन में एकदम निरंतर विचार चलते रहना चाहिए हर क्षण पर। अभी मैं ये कर रहा हूँ इससे प्रगति होगी या इससे अधोगति होगी, इट विल मेक मी फ्लरिश और इट विल मेक मी पेरिश इन भक्ति। तो उसके बाद जब ऐसा भाव रहता है तब व्यक्ति जो शास्त्र का सार है उसको पकड़ने में सक्षम हो पाता है। तो अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि जो वैष्णव है उनका हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति, कृष्ण भक्ति का अर्थ ही है कि वैष्णव का दास बनना, जैसे संकर्षण दादागिरी प्रभु कहते हैं कि डिवोटी ऑफ कृष्ण मीन्स सर्वेंट ऑफ वैष्णव, कृष्णदास अर्थात वैष्णव दास, दोनों में अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि वो मेरा भक्त है तो वास्तव रूप से वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है। तो जब भगवान कहते हैं मन मनाभव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, तो उसका अभिप्राय है कि भक्तों का भक्त बनना पड़ेगा, वैष्णवों का दास बनना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों का संग है, यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। जो श्रद्धा जहाँ से आती है, श्रद्धा और उसके बाद साधु संग इत्यादि, वो श्रद्धा भी भक्तों के संग से, जो हमने जानबूझकर संग नहीं किया है लेकिन अनायास ही जो संग हो गया है, उस संग के कारण ही श्रद्धा निर्माण होती है। उस श्रद्धा से हम भगवान के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण हमारे हृदय में जागृत होता है, तो वो श्रद्धा भी केवल वैष्णव के संग से निर्माण होती है। इसलिए जो वैष्णव संग है वो भक्ति की पूरी नींव है। अब कोई भी इमारत होती है तो नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद ऊपर क्या क्या बन सकता है वो अलग बात है, लेकिन नींव होना आवश्यक है, अर्थात अन्यथा बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती है। तो जो वैष्णव संघ है वो हमारे भक्ति के सभी कार्यों के लिए नींव की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए कि भागवतम क्लास है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवया, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार के भागवतम होते हैं, एक है ग्रंथ भागवतम और एक है व्यक्ति भागवतम। तो ग्रंथ भागवतम में व्यक्ति भागवतम का वर्णन आता है, किस प्रकार से भगवान के महान भक्त भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। और जो व्यक्ति भागवतम है वो जो ग्रंथ भागवतम है उसके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति भागवतम है वही ग्रंथ भागवतम का जो मर्म है उसको बताता है। उदाहरण के लिए जो देवानंद पंडित जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में वे भागवतम के ही विद्वान थे, भागवतम के ऊपर ही चर्चा करते थे, इसीलिए शिवराज ठाकुर वहां सुनने के लिए गए थे। तो भागवतम के ऊपर चर्चा करते थे, भागवतम के विख्यात पंडित थे, लेकिन फिर भी वे भागवतम का जो सार है उसको नहीं समझ पाए क्योंकि व्यक्ति भागवतम की कभी सेवा नहीं की थी। तो ग्रंथ भागवतम में रुचि प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति भागवत की सेवा करना आवश्यक है, ऐसा भागवतम में ही कहा गया। सुसुसो श्रद्धानश्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महसेवया विप्र पुण्य तीर्थ निवेश। तो भागवतम का मर्म जानने के लिए व्यक्ति भागवतम के हृदय से ही वो मर्म आएगा। इसीलिए भागवतम में कई स्थानों पर गुरु और शिष्य के गुणों की चर्चा की गई है, किस प्रकार के सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार के गुरु थे, परीक्षित महाराज के क्या गुण थे, सुत गोस्वामी के क्या गुण थे। क्योंकि जब तक वे ये गुण व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे तब तक वो भागवतम का जो मर्म है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक गुरु की सेवा नहीं करेंगे, गुरु को शरणागत नहीं जाएंगे, तब तक भागवतम का साक्षात्कार नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भागवत है उसकी सेवा करना बहुत ही अनिवार्य है। और वैष्णवों के माध्यम से ही हमको हरिनाम भी प्राप्त होता है। अगर हरिनाम कोई व्यक्ति ले भी रहा है लेकिन अगर एक भक्त की संगति उसको प्राप्त नहीं है, विशेष रूप से एक बहुत उत्तम कोटि के भक्त से वह संबंध ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो हरिनाम जप करने के बाद भी वह भक्ति और मुक्ति के प्रयास में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम का प्रभाव इतना है, नाम प्रभु तो साक्षात भगवान है, कि अपराध युक्त नाम लेने से भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। भौतिक सुख तो अपराध युक्त नाम लेने से भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है और नामावास लेने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयोजन है कि हमको शुद्ध भक्त बनना है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए एक शुद्ध भक्त से संबंध ज्ञान प्राप्त करना और उसकी शरणागत जाकर सेवा करना वो अनिवार्य है। केवल हरिनाम लेने से शुद्ध भक्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए वैष्णव माध्यम बनते हैं। तो भक्ति के जो भी साधन है उसमें वैष्णवों का और विशेष रूप से उत्तम भक्तों के संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। श्रील रूप गोस्वामी जब 64 अंग बताते हैं भक्ति के भक्ति रसामृत सिंधु में, तो पहला कहते हैं कि पहले व्यक्ति को एक जो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, आदो गुरु पादर्श, उसके बाद उससे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसके बाद उसकी सेवा में लगना चाहिए, और साधु वर्तमान वर्तनम, जो पूर्ववर्ती साधु रहे हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं, उनके मार्गों का अनुगम करना चाहिए, समझना चाहिए उन्होंने कैसे भक्ति किया, उन्होंने किस प्रकार से भगवान की सेवा की, उनसे प्रेरणा लेकर के उनके पथ पर चलना चाहिए। और ये गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में ज्ञान दे, उनके जीवन से उनको प्रेरणा दे। इसीलिए जब रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भी जब बताते हैं कि कौन सी चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल है, किन चीज़ों को करने से भक्ति में प्रगति होती है, अनुकूल जैसे संकल्प उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृत्ति, तो सतोवृत्ति के वर्णन में शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपना जो पुस्तक है जिसमें क्या नाम है उसका, सिक्स फॉल्ट्स एंड सिक्स भक्त्यालोक को वर्णन करते हैं कि सतोवृत्ति का अर्थ है कि साधु मार्गों का मार्ग का अनुगमन करना, साधुओं के मार्ग को जानना और उनके पद चिन्हों पर चलना को साधु सतोवृत्ति कहते हैं। और फिर वो साधुओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हमारा हृदय बहुत प्रफुल्लित हो जाता है जब हम जब रघुनाथ दास गोस्वामी के गुणों का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से वो दृढ़ संकल्पित है, तो हमारा हृदय बहुत प्रफुल्लित होता है। जब हरिदास ठाकुर के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से काजी ने उनको कहा कि आप हरिनाम का जप बंद कर दीजिए अगर अन्यथा हम आपको मृत्यु दंड देंगे, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप अगर मेरे शरीर को लाखों टुकड़ों में भी काट देंगे तो हर एक टुकड़े से क्या होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हर एक जो शरीर का अंग है कटने के बाद भी केवल हरिनाम का ही जप करेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रफुल्लित होते हैं कि ऐसे आचार्यों के गुणों का वर्णन करने से इनके जो दृढ़ संकल्पता है, इनका भगवान के प्रति प्रेम है, सेवा भाव है, उसको देखने से हमको बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। तो बहुत बड़ा उन्होंने लेख लिखा है सतोवृत्ति के ऊपर और वो बहुत ही सुंदर लेख है। वो दोनों दो भाग में उसको लिखते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में भक्त है उनके लिए सतोवृत्ति का अर्थ क्या है और जो वैरागी जीवन में जो भक्त है उनके लिए सतोवृत्ति का अर्थ क्या है। तो तो ये जो भक्त्यालोक पुस्तक है बहुत ही सुंदर पुस्तक है, क्योंकि ये जो छह अंग हैं जो भक्ति में प्रगति करने में सहायक हैं, और जो छह दोष हैं जिनके कारण भक्ति में अधोगति होती है, उसका वो बहुत सुंदरता से और विस्तार से और वैरागी जीवन के लिए और गृहस्थ जीवन के लिए दोनों के लिए बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं। तो ये साधक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर वहां वर्णन करते हैं कि दो प्रकार के आचार्य होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले जो महाजन हुए हैं, 12 महाजन यहाँ पर उपस्थित हैं और अन्य गण भी, तो वे पूर्ववर्ती महाजन या भूतकाल के महाजन हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो वर्णन करते हैं कि वो है। और चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद जो आधुनिक महाजन है, बोले इनका आचरण करना, इनसे सीख लेना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है और चैतन्य महाप्रभु के तुरंत बाद जो आए हैं, विशेष रूप से छह गोस्वामी और हमारे जो आचार्य के परंपरा के आचार्यगण हैं, उनके जीवन से सीखना, उनके जीवन के बारे में जानना, ये हमारी भक्ति में प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वैष्णवों की कृपा के बिना भक्ति में प्रगति करना असंभव है। इसलिए हमारे आचार्यगण बहुत सारे वैष्णव गीतों में इसका वर्णन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कहते हैं कि कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आज है, कृष्ण आपके हैं। जब हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो जिस व्यक्ति के पास है वही देने में सक्षम है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण वैष्णव की संपत्ति है, कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वैष्णव, तो वे देने में सक्षम है। इसीलिए मैं कंगाल हूं, मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं, इसलिए आप मुझे कृपा दीजिए। और दूसरे एक गीत में कहते हैं, कबे श्री चैतन्य मोरे गौरी बेन दया, कब श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर दया करेंगे। दया करेंगे तो कैसे पता चलेगा दया आपके ऊपर हो गई। कबे आमी पाई वो वैष्णव पद छाया, जब मुझे वैष्णव पद छाया, वैष्णव के पद में उनके आदेश में रुचि जागृत होगी, तब मुझे चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक कृपा प्राप्त होगी। इसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर अनेक गीतों में उसका वर्णन करते हैं, गंगा र परश होते पाश्चात्य पावन, गंगा में स्नान करने के लिए तो जाना पड़ेगा कुंभ मेला में, टिकट बुक करा के, और वहां पर भी स्नान करने के लिए प्रयास करना पड़ता, लेकिन दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। जो महान वैष्णव है वे केवल अपना दर्शन देने मात्र से दूसरों को पवित्र कर देते। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बोले सूत्रिता। तो वैष्णव का गुण है कि केवल अगर वो दर्शन भी देते हैं, अगर हमने उनसे कुछ वचन सुने तो बहुत अधिक मात्रा में शुद्धिकरण होता है, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त का दर्शन भी करते हैं तो भी हमारी चेतना में शुद्धिकरण होता है। तो ये वैष्णव का गुण है। तो इस प्रकार से वैष्णवों का आश्रय लेना और वैष्णवों की महानता के बारे में सुनना और उनके प्रति आसक्ति जागृत करना, ये बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि कौन सा श्लोक है, महत कृपा से विमुक्ति द्वार खुल जाता है, महासेवा द्वारा आहुर विमुक्ति, तो महासेवा से ही विमुक्ति का द्वार खुलता है। विमुक्ति मतलब विशेष मुक्ति, यानी कि भगवत धाम जाकर के भगवान की सेवा करना, मुक्ति अर्थात ब्रह्मज्योति वाली मुक्ति, तो वो केवल और केवल महासेवा से ही संभव होता है। इसीलिए जब आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस जब आते हैं तो उस दिन उनके गुणों पर मनन करना, उनकी गतिविधियों पर मनन करना, इससे हमारा मन भी शुद्ध होता है और हमारी उनके प्रति आसक्ति बढ़ती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनका गीत है, कृष्णा होय ते चतुर्मुख होय कृष्ण सेवन मुख, तो ये जो गीत है ये उन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका लिखने से पहले एक इन्वोकेशन, एक प्रार्थना के रूप में लिखा है, जिससे वो आचार्यों की कृपा प्राप्त करें। तो उसमें वो सारे आचार्यों का वर्णन करते हैं और कहते हैं, गौरंगेर निज वंश इहार परमहंस, गौरंगेर निज वंश, ये जो सब परमहंस वैष्णव है ये सब गौरंग महाप्रभु के सब वंश के लोग हैं। और जब हम ब्रह्मवादी गौड़े संप्रदाय यानी इस्कॉन संस्था से जुड़ते हैं तो हम भी अभी उस वंश परंपरा के सदस्य हैं। तो भौतिक जो हमारा संबंध है, भौतिक जो हमारा वंश है, गोत्र है, वो तो है, लेकिन हमें आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक तौर पर इस संबंध को, जो हमारा आचार्यों के साथ संबंध है, इसको ज्यादा गहराई से लेकर हमें उस परिवार का सदस्य अपने आप को मानना चाहिए। इहार परम हमस गौरंगेर निज वंस तांदेर चरण मम गति, जो मेरा जो गति है और मेरा मति है वो केवल इनके चरणों में लगा रहे। तो इसलिए जब हम आचार्यों का वर्णन करते हैं तो उनको कोई एक, जैसे कोई फिल्म का हीरो होता है या अन्य लोग होते हैं वैज्ञानिक इत्यादि, उनके जैसा नहीं समझना चाहिए, उनको एक अपने परिवार का भाग मानकर या स्वयं को उनके परिवार का भाग मानकर उनके बारे में श्रवण या कीर्तन करना चाहिए, उनको अपना संबंध उनसे जानना चाहिए। क्योंकि अगर संबंध नहीं जानेंगे तब फिर वो ऐसा रहेगा जैसे कि हम किसी भी और व्यक्ति के बारे में जानते हैं, लेकिन जब जानेंगे कि ये हमारे ही, हम इनके वंश में आने वाले लोग हैं, प्रभुपाद की कृपा से उनके वंश से जुड़े हैं, तो एक पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध हमको अनुभव करना चाहिए आचार्यों के साथ। ये भक्ति में प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नरोत्तमदास ठाकुर बाद में कहते हैं कि गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने ये जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो व्यक्ति समझ जाता है कि गौरांग महाप्रभु के पार्षद और आचार्यगण ये सब नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो तुरंत ही ब्रजेंद्र सुत पास, ब्रजेंद्र सुत को प्राप्त करता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवतम में कई बार कई सारे अध्याय में केवल भक्तों के नामों का वर्णन है। कभी कभी सोचते हैं अभी तो वो भक्त नहीं है, हम तो जानते भी नहीं वो कैसे दिखते थे ना, लेकिन वैष्णव की महानता इतनी है कि उनके नामों का उच्चारण करने से भी, उनका नाम लेने मात्र से भी हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए पूरे चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थानों पर वैष्णवों के नामों का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है। तो अभी जो थोड़ा समय बचा है उसमें हम जो आचार्यों के जीवन से, उनके जीवन को जानने से, उनके बारे में पढ़ने से, उनके बारे में सुनने से किस प्रकार से हमको कृपा प्राप्त होती है उसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद उसको विराम। तो हम प्रभुपाद जी के बारे में कहते हैं इंग्लिश में हिज डिवाइन ग्रेस और हिंदी में कहते हैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, अर्थात भगवान की कृपा हमारे जीवन में आचार्य के रूप में, विशेष रूप से श्रीला प्रभुपाद जी के रूप में आई। श्री कृष्ण कृपा की मूर्ति है वो, हिज डिवाइन ग्रेस। तो किस प्रकार से ग्रेस हमारे जीवन में आता है इसकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे। तो ग्रेस का एक एक्रोनिम बनाने का मैंने प्रयास किया जिससे कि याद रखने में थोड़ा सरल हो, बोलने के लिए भी और सुनने के लिए भी, याद रखने के लिए भी। तो जो पहला जी है ग्रेस का, कृपा का, वो है कि जब हम आचार्य के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। कृतज्ञता हमारे जो भक्तिमय जीवन रूपी वाहन है उसके लिए ईंधन के रूप में काम करता है। जैसे कि अगर कोई वाहन है लेकिन ईंधन नहीं है, गैस पेट्रोल डीजल नहीं है, तो वाहन आगे नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से हम भक्तिमय कार्यों में सतत रूप से संलग्न नहीं रह सकते अगर हृदय में कृतज्ञता नहीं है। तो जब हम उनके बारे में श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे जीवन में इतने सारे उपहार हमको दिए। हाउ दे हैव गिफ्टेड अस सो मेनी गिफ्ट्स। अभी हमारा जो इस्कॉन का जीवन शैली है अगर हम देखेंगे तो ये सारा पूरे आचार्यों का जो मत को लेकर शिला प्रभुपाद जी ने इसका निर्माण किया है, चाहे सुबह का कार्यक्रम हो या फिर हमारी सेवाएं हो। तो अगर हम प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तब हम जो हमारा जो दैनिक कार्यक्रम है उसको और गंभीरतापूर्वक ले सकेंगे। जिस प्रकार से हम सुबह मंगल आरती करते हैं तो हम गुरु अष्टकम गाते हैं, अगर हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने वो लिखा है उनके जीवन के बारे में जानेंगे तब हम जब गुरु अष्टकम गाएंगे तो गुरु अष्टकम में गुरु को, प्रभुपाद जी को स्मरण करने के साथ साथ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी स्मरण करेंगे और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से इस्कॉन में एक ऐसी ऐसे प्रोग्राम का, ऐसा एक कार्यक्रम दिया जिसके माध्यम से जन्म सार्थक और परोपकार दोनों के लिए व्यक्ति को एक सुविधा हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए मंदिर नहीं है तो घर पर उठकर मंगल आरती करना इत्यादि करना थोड़ा कठिन होता है, टाइम भी फिक्स नहीं रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने मंदिरों का निर्माण किया, विग्रहों की स्थापना की जिससे कि मंदिर में सब लोग एकत्रित होकर के भगवान की सेवा में सुबह 4:30 बजे ही मंगल आरती प्रारंभ करें। तो जन्म सार्थक करने के लिए पूरा कार्यक्रम प्रभुपाद जी ने दिया। सुबह का जो कार्यक्रम है मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जप, गुरु पूजा, और परोपकार करने के लिए भी प्रभुपाद जी ने इतनी सुविधा का निर्माण किया। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे जिनको हम पढ़ते हैं, जिनका हम वितरण करते हैं मैराथन के महीने में। इतने प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया, अलग अलग उत्सवों का आयोजन किया जिससे कि नए लोगों को इसको संस्था से जोड़ा जा सके। अब रथ यात्रा होती है तो कितने शिरूर में रथ यात्रा है, कितने सारे लोग भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जन्म सार्थक करने के लिए और परोपकार करने के लिए दोनों के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाया कि केवल प्रभुपाद जी के कार्यक्रम का पालन करने मात्र से हम दोनों चीजें आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, तो प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उसमें भी जो सारे आचार्यगण हैं उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि प्रभुपाद जी जब बैठते थे तो 12 कमेंट्री लेकर के बैठते थे और सब कमेंट्री पढ़ करके उनका संस्कृत अनुवाद पढ़ करके उसको फिर उसमें से हमारे जीवन के लिए इस समय के लिए इस काल के लिए क्या उपयुक्त है उसका वर्णन अपने तात्पर्य के रूप में लिखते थे। तो ये भी प्रभुपाद जी का उपहार है। तो इस्कॉन में हमको जो भी मिलता है वो प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत उपहार है हमें से एक हर एक के लिए। लेकिन अगर प्रभुपाद के जीवन के बारे में गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम जो हमारे उपहार है उनको साधारण मान लेते हैं, उसको गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। तो मैं कल पूछ रहा था करीब 50 लोग थे कि कितने लोगों ने लीलामृतम पढ़ा है, तो केवल 4 या 5 भक्तों ने पढ़ा था। तो बिना लीलामृतम पढ़े भी बिना प्रभुपाद जी को गहराई से जाने भी हम इतना समर्पण कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी का जीवन पढ़ेंगे तो हम कितने और ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे। जब मैं 2002 में जुड़ा था भक्ति से तो उस समय दुर्गा पूजा की छुट्टी होती है बंगाल में, तो 8-9 दिन की छुट्टी होती थी। उस समय घर जाने की जगह मैं वहीं रुका था, तो 8 दिन में मैंने लीलामृतम मैराथन किया था, लीलामृतम पढ़ने का। लेकिन 8 दिन में पढ़ने के बाद उस समय ही मेरे मन में ऐसा दृढ़ निश्चय आया कि अभी जीवन भर में कभी ना इस्कॉन को या भक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे जो भी स्थिति हो। तो लीलामृतम के माध्यम से इतना हमको जो प्रभुपाद के बारे में इतना कन्विक्शन आता है, इतना डिटर्मिनेशन आता है प्रगति करने के लिए और प्रभुपाद जी ने जो बनाया उसके प्रति वफादार रहने के लिए, लॉयल बनने के लिए। तो इस प्रकार से जब आचार्य के बारे में पढ़ते हैं तो उनके दिए गए जो उपहार हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। अभी हम वैष्णव कैलेंडर इसका हम देखते हैं अभी कौन सा तिथि कब है और किस आचार्य का कब आविर्भाव तिरुभाव दिवस है। तो ये जो कैलेंडर है ये भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बनाए पूरा रिसर्च करके। जब श्रीला गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको कहा कि आप वैष्णव पंजिका बनाइए जिसमें सभी जो आचार्य हैं उनका आविर्भाव दिवस तिरुभाव दिवस को उसमें संलग्न कीजिए। तो इस प्रकार से जो भी हमारे भक्तिमय जीवन में आता है उसका नियमित निश्चित रूप से संबंध पूर्ववर्ती आचार्यों से है। तो हम आचार्यों को जानेंगे तो उस कार्य को हम और कृतज्ञतापूर्वक कर सकते हैं और भावपूर्वक कर सकते हैं। अन्यथा अगर आचार्यों को नहीं जानेंगे तो केवल कार्य करने से वो गतिविधि जो है कृत्रिम बन जाती है, मैकेनिकल बन जाती है। लेकिन आचार्यों को जानेंगे उन्होंने कैसे दिया है तब हम उसको और भावपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। दूसरा है ये ग्रेटिट्यूड फॉर द गिफ्ट। दूसरा है कि जो वैष्णव गुण है उनका साक्षात्कार हमें आचार्यों के जीवन के माध्यम से ही होता है, रिविलेशन ऑफ द वैष्णव क्वालिटीज। अभी भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं कि कौन से भक्त उनको प्रिय है और भगवान उनमें कुछ सेवाओं का वर्णन नहीं करते हैं, भगवान केवल गुणों का वर्णन करते हैं कि इस जिस भक्त में अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रेय करुणा एव च। इस प्रकार जो जो गुण है जो इन गुणों जिस व्यक्ति के पास ये गुण है ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान किसी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होते, भगवान किसी कार्य से प्रभावित नहीं होते। कार्य के प्रति पीछे जो हमारा भाव है उस भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छी भावना के साथ किया गया कार्य भगवान को प्रसन्न करता है, लेकिन केवल अच्छा कार्य है भावना नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो वैष्णव गुणों का भगवान बहुत वर्णन करते हैं, गीता में कई जगह पर किस प्रकार के भक्त उनको प्रिय है उसका वर्णन करते हैं। लेकिन उन गुणों को पढ़कर समझना मुश्किल है। जब हम उनको आचार्यों के जीवन में देखते हैं तब वो गुण क्या है उनको हमारे जीवन में कैसे लगाना है उसका हमको साक्षात्कार मिलता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 4 जो उनके भक्त थे उनको गुणों का आचार्य बनाया। सनातन गोस्वामी को विनम्रता उनके माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की, सहनशीलता सहिष्णुता श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकट की, और स्पष्टवादी कैसे होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वो दामोदर पंडित के माध्यम से सिखाया, और किस प्रकार से इंद्रिय संयमित होनी चाहिए वो रामानंद राय के माध्यम से सिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि सभी भक्तों में सभी गुण होते हैं लेकिन फिर भी उनके उदाहरण से दिखाए, जैसे सनातन गोस्वामी थे या रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हालांकि इतने बड़े परिवार से आए थे लेकिन वैराग्य जीवन लेने के बाद जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद वो भिक्षा मांग करके लेते थे, बाद में भिक्षा भी नहीं लेते थे, वो जो चावल जो सड़ जाता था उसको लेते थे। तो वैराग्य का उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से सिखाया। तो वैष्णव गुणों को अगर प्रैक्टिकल रूप में देखना है, व्यवहारिक रूप में देखना है तो वो आचार्यों के जीवन से ही वो दृष्टांत दिखता है। इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी उनका भाव कितना नम्र था कि महाप्रभु को जब मिलते हैं, हालांकि वो बंगाल प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं और इतनी बड़ी संपदा है उनके पास, इतना सारा ज्ञान है, इतने सुंदर हैं दिखने में, लेकिन फिर भी गले में कपड़ा बांधकर मुख में तिनका लेकर के महाप्रभु को शरणागत जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो जीवन है, वो जगाई मदाई से भी नीचे, जगाई मदाई भी हमसे श्रेष्ठ है। तो ये वास्तविक नम्रता है कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ऐसा नहीं कहते कि वो हमसे गिरे हुए हैं, हम उनसे तो कम से कम बेटर हैं, कम से कम एटलीस्ट वी आर बेटर देन जगाई मदाई, नॉट एनीवन एल्स, ऐसा नहीं कहते। तो इस प्रकार से वैष्णव गुणों का जो जो वास्तविक रूप से पहचान है, वो वैष्णव आचार्यों के जीवन के माध्यम से ही होती है। तो हम जब गुण प्राप्त करना चाहते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो, तो वे गुण भगवान द्वारा ही दिए जाते हैं। कोई भौतिक कार्यकलाप ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से हम कहें कि हम प्लान बनाएंगे, दो महीने में हम ह्यूमिलिटी 80% एटलीस्ट विल एक्वायर, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन भक्तों में नम्रता है, जिन भक्तों को भगवान ने वो गुण दिया है, उन भक्तों की हम प्रशंसा करते हैं, उन आचार्यों की प्रशंसा करते हैं, तो उस प्रशंसा से प्रसन्न होकर के भगवान वो गुण हमारे हृदय में स्थापित करते हैं। जिस प्रकार से कि अगर हम भक्तों में दोष देखते हैं, तो वो दोष भी भगवान हमको दे देते हैं, क्योंकि ध्यायतो विषयान् पुंसः, जिस चीज के ऊपर ध्यान करेंगे, अच्छे गुण के ऊपर ध्यान करेंगे, अच्छे गुण आ जाते हैं, और अगर दोष के ऊपर ध्यान करते हैं, अवगुण देखते हैं, तो वो अवगुण भी हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव गुणों को वास्तविकता में समझने के लिए आचार्यों के जीवन का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, रिवील्स द वैष्णव क्वालिटीज ऑफ द आचार्य। तीसरा है कि अगर आचार्यों के प्रति हमको आसक्त होना है, उनके प्रति अनुराग अनुराग उत्पन्न करना है, वी हैव टू गेट अट्रैक्टेड एंड अटैच टू आचार्यस, तो उनके बारे में श्रवण कीर्तनम से ही वो अनुराग और आसक्ति जागृत होती है। आसक्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों? महत् कृपा अनुगामी भगवत कृपा, महत् कृपा के बिना भगवत कृपा जीवन में नहीं आ सकती है। तो इसलिए आचार्यों के प्रति जो आकर्षण है, वही आकर्षण बाद में भगवान के प्रति प्रदर्शित होता है। भगवान और आचार्य जो उनके शुद्ध भक्त हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में नहीं आते। जिस प्रकार से भगवान का नाम रूप गुण लीला एक एब्सोल्यूट स्टेटस का है, पूर्ण रूप से आकर्षित है, उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो नित्य पार्षद है, नित्य सिद्ध भक्त है, उनका भी नाम रूप गुण लीला एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है। भगवान और भक्त को साथ में ही वी अप्रोच देम टुगेदर, उनको साथ में ही हम उनकी शरण में जाते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। भगवान की शरण में जाना अर्थात भक्त की शरण में जाना, भक्त की शरण में जाना अर्थात भगवान के साथ उनकी शरण में जाना। तो इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं उनके बारे में सुनने से, पढ़ने से, कोई भी चीज हो जीवन में, किसी भी चीज के प्रति अगर हमारी आसक्ति है, तो वो केवल सुनने से और उन व्यक्ति का संग करने से ही आती है। जैसे हमारे बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज पहले नहीं देखे, लेकिन केवल उसके बारे में श्रवण करते करते हम भी सोचे, हाँ इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना, क्योंकि इतना श्रवण किया उसको। और बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिकेट स्टार के फैन बन जाते हैं, या पिक्चर के जो हीरो होते हैं उनके फैन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके बारे में श्रवण करते हैं, दूसरों से चर्चा करते हैं, क्या हुआ उसमें, क्या हुआ वैसा, क्या हुआ। तो श्रवण करने से, पढ़ने से व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के प्रति, उसके गुणों के प्रति आकर्षित हो जाता है, ये हम देख सकते हैं हमारे जीवन में। उसी प्रकार से आकर्षित तो हमको होना ही है, वो तो हमारी संवैधानिक स्थिति है, लेकिन अगर कृष्ण के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, और जब आचार्यों के गुणों के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में पढ़ते हैं, तब हम उनके प्रति, हमारा हृदय आकर्षित होता है। जब हृदय आकर्षित हो जाए, उनके प्रति आसक्ति होती है, तब हम उनके जो आदेश हैं उनको दृढ़ता से पालन करते हैं, तब हमारे हृदय के अंदर दृढ़ता जागृत होती है, जिससे हम उनके आदेशों का पालन करते हैं और फिर भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ये तीसरा है। चौथा है कि भक्ति करने के लिए जो दृढ़ संकल्पता चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, और प्रचार करने के लिए जो करेज चाहिए, वो भी आचार्यों के जीवन से हमको प्राप्त होती है। ओके, कॉन्फिडेंस एंड करेज फॉर प्रैक्टिस एंड प्रीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि कभी कभी भक्त बनने के बाद हमको लगता है कि सब सुखमय हो जाना चाहिए, सब जगह गुलाब खिलने चाहिए, आकाश में सब तापमान ठीक होना चाहिए, सब फेयर वेदर हो जाना चाहिए, सब जगह क्या कहते हैं बेड ऑफ रोजेस ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि जो भी आचार्यगढ़ रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, बहुत संघर्ष किया है। हालांकि उनको संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान दिखाना चाहते हैं कि भौतिक जगत की एक स्थिति है, भौतिक जगत बाय डिजाइन नॉट बाय चांस इज मिजरी प्रोड्यूसिंग, नो मैटर हु वन इज, मैटर वर्ल्ड नेचर इज लाइक दैट। जो भी हो व्यक्ति, भौतिक जगत का स्वभाव है कि यहाँ पर दुख है और अनित्यता है। तो क्यों? क्योंकि हम भौतिक जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करने की आकांक्षा इतनी प्रबल रहती है, तो आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक रूप से चीजों को ठीक ठाक बना के रखना चाहते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, परिवार ठीक रहना चाहिए, जॉब बिजनेस ठीक रहना चाहिए और सोसाइटी में सब ठीक से रहना चाहिए, ऐसी आकांक्षा मन में रहती है। और जब कुछ भी दुविधा आ जाती है, कुछ भी कष्ट आ जाता है, तो भक्ति करने में हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो थोड़ा डगमगा जाता है, हिल जाता है। लेकिन जब आचार्यों का जीवन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने भगवान को सब कुछ समर्पण किया है और जीवन में जो परिस्थिति हो लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। उदाहरण के लिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी जीवनी अगर हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश समय, जीवन का पूरा जीवन देखेंगे तो अधिकांश समय वो बीमार स्थिति में थे, बहुत सारी परेशानी थी, उनका वर्णन करते हैं सोलह की जीवनी में वर्णन करते हैं। तो भगवत भक्ति करने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा ये कहीं पर गारंटी नहीं है, लेकिन हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए। तो जो भक्ति में जो बाधाएं आती हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए, संकल्प बनाए रखने के लिए आचार्यों का जीवन देखना बहुत आवश्यक है। अभी प्रभुपाद जी जब विदेश गए प्रचार करने के लिए, तो पानी के जहाज पर उनको हृदयाघात हुआ, और पानी के जहाज पर कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई दवाई की फैसिलिटी नहीं है, भगवान का मिशन पूरा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हृदय का आघात हुआ। तो देखते हैं कि प्रभुपाद जी अगर उस आयु में हृदयाघात होता है, उसके बाद भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को क्यों दोष देना चाहिए? तो ये आचार्य हैं जो अपने उदाहरण से सिखाते हैं। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति जब भगवान के नाम का और भगवान के गुण का प्रचार करेगा तो अवश्य ही बाधाएं आएंगी। जब हमारा इस्कॉन के प्रचार में बाधाएं आ रही थी, तो श्रीला प्रभुपाद जी बोले हमारा प्रचार प्रमाणिक है, इसलिए बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रचार करने का जब प्रयास किया नवद्वीप में, तो तुरंत काजी आकर के उनका विरोध करने लगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर प्रमाणिक प्रचार है तो विरोध अवश्य होगा, लेकिन उस विरोध में कैसे हिम्मत को बनाए रखना है, हाउ टू हैव करेज, वो हमको उनके जीवन से मिलता है। इतने सारे कष्ट हमारे आचार्यगण झेलते हैं केवल कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद जी कितने सारे, कितना संघर्ष किया, भारत में संघर्ष किया, उसके बाद अमेरिका में जाने के बाद एक साल इतना संघर्ष किया, और उसके बाद भी संघर्ष कम नहीं हुए, बाद में भी स्वास्थ्य का संघर्ष इत्यादि। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रचार कर रहे थे, तो ऐसा वर्णन आता है कि एक पुलिस वाला था जो वास्तव में डाकू जैसा था, जो लोगों की हत्या करता था, उसको उस समय जो तथाकथित ब्राह्मण थे उन्होंने 20,000 रुपया देने के लिए वचन दिया। अब इस जो 20,000 है 1930 के लगभग की बात, उस समय का 20,000 रुपया अभी करोड़ों के समान होगा, लेकिन वो इतना उनके प्रचार से, और भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, बाहरी चीज का प्रचार नहीं कर रहे, किसी को दोष नहीं दे रहे, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये बहुत ही जगत क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्तियों से भरा हुआ है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति प्रचार करने का प्रयास करेगा उसका विरोध होना अनिवार्य है प्रमाणिक प्रचार का, कहीं भी हो, चाहे लंदन में इस्कॉन का प्रचार देखिए, अमेरिका में देखिए, या कहीं पर भी जैसे प्रचार बढ़ता है बीच में अवरोध आते हैं। तो जब हम आचार्यों के जीवनी पढ़ते हैं तो हमको बहुत हौसला मिलता है, बहुत करेज मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम भी भक्ति के पथ का पालन कर सकते हैं, और जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो विरोधी चीजें आ रही हैं, उनको हम भगवान की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हम उनको पार कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो सोना है वो तपने के बाद और चमक जाता है, उसी प्रकार से भक्तों की भक्ति को और चमकाने के लिए या उनको और प्रेरित करने के लिए, उनको जगत को दिखलाने के लिए भगवान अपने भक्तों को अलग अलग कठिनाइयों को सामना करने के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार से वी गेट कॉन्फिडेंस एंड करेज बाय रीडिंग अबाउट द लाइव्स ऑफ ग्रेट आचार्यस, हाउ दे हैव स्ट्रगल्ड। और हर समय पर हर आचार्य के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ, कुछ न कुछ परेशानी हमेशा रही है, अभी नहीं पहले भी। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे तो कुछ दार्शनिक मतभेद था, तो दार्शनिक मतभेद के कारण वहाँ के वृंदावन के ब्राह्मण राधा कुंड में हथियार लेकर के गए, जिससे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हत्या कर दी। ये उनके समय की बात है, केवल दार्शनिक मतभेद था, ऐसा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन वो देखने लगे कि अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहेंगे तो जो हमारा मत है उसको स्थापित नहीं होने देंगे। तो हर आचार्य के जीवन में अलग अलग प्रकार के जो चैलेंजेस हैं और जो टेस्ट हैं वो आते हैं, उनको देखकर हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो चीजें आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, वो बहुत छोटी मात्रा में, और ऐसा नहीं कि तभी आते थे। अभी भी हम देखते हैं परम पूज्य जयपता स्वामी महाराज, अभी 10 साल पहले उनको स्ट्रोक हुआ था, तो वामनदेव प्रभु उस दिन अपनी क्लास में बता रहे थे कि 10 सालों में उस स्ट्रोक के साथ, फुल रिकवरी नहीं हुआ व्हीलचेयर पर, उसके साथ उन्होंने कितने देशों की यात्रा की, कितने लाख किलोमीटर वो प्लेन में बैठ के उड़े, कितनी सारी फ्लाइट ली, कितना किलोमीटर रोड पर चले, और ये मतलब एक अच्छा खासा सेहत वाला व्यक्ति भी इतना प्रचार नहीं करता, हजारों में लेक्चर दिए, क्योंकि हर दिन महाराज एक लेक्चर देते हैं। तो आचार्यों के जीवन के बारे में जानने से हमें भक्ति करने के लिए बहुत तीव्र प्रेरणा प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। और ग्रीस के बाद जो ई है वो है कि जो एसेंस ऑफ शास्त्र है, शास्त्र का जो सार है वो उनके जीवन से प्राप्त होता है, उनके उदाहरण से हमें प्राप्त होता है, अन्यथा शास्त्रों में कई सारी चीजें कई बार अलग अलग तरीके से दी गई है। इस समय पर हमारे लिए क्या अनुकूल है, किस प्रकार से उसको जीवन में उतारना है, ये आचार्यों के जीवन से ही पता चलता है। और इस संदर्भ में इस्कॉन के भक्तों के लिए, हम सबके लिए प्रभुपाद जी का जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद जी के पहले के भी जो आचार्य रहे हैं उन्होंने भक्ति का प्रचार करने के लिए अलग अलग माध्यम का उपयोग किया है, अलग अलग तरीके से प्रचार किया है, जिसमें कभी कभी हम जैसे तात्पर्य में लिखा था कि एक महाजन दूसरे महाजन का किस प्रकार से पालन करता है, इस तथ्य को समझने में कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो सकता है और अपराध कर सकता है। इसलिए हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड दिया प्रचार का और जो हमारे दैनिक कार्यक्रम का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट जो भगवान ने दी है वो है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो जो ग्रंथ हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनके जो पत्र हैं, उनके भजन कीर्तन इत्यादि हैं, वो सबसे बड़ी भेंट है। हमारे पास बाकी आचार्यों के वाणी रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी की इतनी सारी वाणी रिकॉर्डेड फॉर्म में, इतने सारे लेक्चर और इतने सारे भजन कीर्तन इत्यादि हैं, तो ये बहुत बड़ी भेंट है। ये हमारी वास्तविक संपदा है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी का इतना सारा जो जो उनका भगवान के प्रति प्रेम है, जो जागृत किया उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, वो सभी हमको उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बस हमको उसका लाभ लेना है। और श्रील प्रभुपाद जी ही शायद एक ऐसे आचार्य हैं जिनके बारे में, जिनके गुणों के बारे में इतना वर्णन किया गया है। अभी इतने सारे पुस्तकें हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखी हैं, चेजिंग राइनोज विद द स्वामी एंड आवर ग्लोरियस मास्टर, व्हाट इज द डिफिकल्टी, स्वामी जी, इतने सारे कम से कम 25 पुस्तक हैं ऐसी जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखी हैं उनके गुणों का वर्णन करने के लिए। अगर हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो जैसे हम पहले बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के प्रति जो हमारा आकर्षण है, आसक्ति है, वो बहुत तीव्र हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि साधारण आसक्ति से साधारण प्रगति होती है, साधारण रूप से प्रगति करते हैं। जब हम तीव्र रूप से आचार्य के प्रति आसक्त होते हैं तब उनके जो जो निर्देश हैं उनको और गंभीरतापूर्वक हम जीवन में उतारते हैं। तो कितना हम श्रील प्रभुपाद जी के सोसाइटी में लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, कितना हम श्रील प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं उनका पालन करेंगे, विशेष रूप से ध्यानपूर्वक माला का जप करना और 4 नियम पालन करना, ये सब निर्भर है कि कितना हमारा श्रील प्रभुपाद जी के प्रति आसक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कितनी हमारी आसक्ति है व्यक्तिगत रूप से, उनका जो संघर्ष है, उनका जो त्याग है, उसके प्रति हमारा कितना प्रेम है, उसके अनुरूप ही हम इस संस्था में सेवा कर पाएंगे, उसके अनुरूप ही उस संस्था में रह करके हम अपनी भक्ति का पालन और प्रचार कार्य आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए ये जो पूरा चर्चा है ये इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी का जो दिए गए जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, और श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका विशेष रूप से अध्ययन करें, जिससे कि हम उनके नाम रूप गुड़ लीला के प्रति आकृष्ट हो जाएं। और इस भाव से इस संबंध में मैंने कुछ चर्चा करने का प्रयास किया है। तो मैं जस्ट एक संक्षेप में ग्रेस का रिविजन करके मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ। पहला है कि हम जब पूर्वाचार्य के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, उनके द्वारा जो दिए गए गिफ्ट हैं, उपहार हैं, उनको देखकर। फिर जो वैष्णव गुण है वो दैट रिवील द वैष्णव क्वालिटीज, उनका जो जीवन है उससे वैष्णव गुणों का साक्षात्कार हमको आता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में, विज्ञान में फार्मूला होते हैं, तो फार्मूला पढ़ के समझना, उसको लगाना मुश्किल है, इसीलिए सब जो अच्छे किताब हैं उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए होते हैं, इससे वो सिखाते हैं कि ये फार्मूला है, इसको ऐसा उपयोग करना है, और बाद में अनसॉल्व एग्जाम्पल में उसको लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम गुणों को देखते हैं, आचार्यों ने किस प्रकार से गुणों का पालन किया, तब हम हमारी परिस्थिति में भी देख सकते हैं। अगर हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में या सनातन गोस्वामी के बारे में, जीव गोस्वामी के बारे में, हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है तब हम समझ सकते हैं कैसा व्यवहार करना। फिर है कि हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं, वी गेट अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड टू वेस्टर्नवाद बाई हियरिंग अबाउट दैम। देखिए जब ये चेजिंग राइनोज विद द स्वामी में वर्णन आता है कि मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु कहीं तो एक जंगल में रहते थे जहां पर उनका कार्य था एक मचान के ऊपर जाना और देखना कि जंगल में आग तो नहीं लगी, आग लगी है तो इन्फॉर्म करना रहता, ये उनको कार्य दिया था। तो मुकुंद प्रभु, जानकी माता जी, यमुना माता जी, जब तीन लोग वहां पर आए तो केवल प्रभु जी का सुना, उन्होंने देखा नहीं था कि स्वामी जी आए हैं, भारत से आए हैं और स्वामी जी इस प्रकार के, केवल उनके बारे में मुकुंद प्रभु से सुनने से श्याम सुंदर प्रभु उसी समय प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित हो गए। और जब प्रभुपाद जी पहली बार सैन फ्रांसिस को पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी, वहां पर लोग कीर्तन कर रहे थे, लोग फूलों का हार लेकर के और बुके लेकर के, एलन गिन्सबर्ग और सब करीब 50 हिप्पी लोग थे वहां पर। और जब वहां पहुंचे प्रभुपाद जी तो जो भी भक्त वहां पर थे, चाहे यमुना माता जी या मालती में, सबके लेखने में वर्णन आएगा कि प्रभुपाद जी जब आए तो प्रभुपाद जी इतना दिव्य दिख रहे थे, उनके उनके चेहरे से इतनी आभा प्रकट हो रही थी और वो जमीन पर नहीं चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ही वॉज जस्ट ग्लाइडिंग। और बिना प्रयास किए, बिना कभी जानने के साधु पुरुष के सामने हमको झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनके संस्कार में नहीं था, लेकिन सब लोग, जितने भी लोग उपस्थित थे, सब लोग वहां पर प्रणाम करते हैं बिना जानकारी के, ऐसा वर्णन सुनने में आता। तो इस प्रकार से एक भक्त के बारे में सुनने से ही उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। और अगर भक्तों के प्रति, आचार्यों के प्रति आकर्षण नहीं होगा तो भौतिक आसक्ति नहीं छूटेगी। भौतिक आसक्ति छोड़ना इतना सरल कार्य नहीं है, वो आसक्ति को कहीं तो लगाना पड़ेगा। जब हम वैष्णव के प्रति, आचार्य के प्रति आसक्त होते हैं तभी भौतिक आसक्ति ढीली पड़ती है, जब छूटती। और फिर जो भक्ति में प्रगति करने के लिए कॉन्फिडेंस और करेज जो चाहिए, प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और प्रीचिंग के लिए करेज चाहिए, वो भी उनके जीवन का अध्ययन करने से हमको प्राप्त होता है। और जो शास्त्रों का मर्म है, किस प्रकार से शास्त्रों को जीवन में लगाना है, वो हमको उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में पढ़ने से पता होता है। विशेष रूप से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आचार्य है श्रील प्रभुपाद, और भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी के बारे में इतना सब कुछ उपलब्ध है, उनकी शिक्षाएं और उनके बारे में और उनकी शिक्षाएं, तो जितना हम गहराई से उनको समझेंगे उतना ही हम व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, चारों दिशाओं में हम बहुत स्टेबलिंग, बहुत इससे तरह से हम भक्ति का पालन कर सकते हैं और दूसरों को भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर करेक्शन।
हरे कृष्णा, कृपया बैठे रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। सबसे पहले हम आज का यह सुंदर प्रवचन रेवतीपति प्रभु ने दिया उसके लिए हृदयपूर्वक उनको धन्यवाद देंगे। तीन बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ग्रेस रेवतीपति प्रभु की। आज का मराठी भगवद गीता क्लास महायोगी प्रभु द्वारा दिया जाएगा शाम को और दोपहर को। दोपहर को इंग्लिश में 11 बजे 11 से 1 और शाम को 6 से 8 इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु द्वारा कृष्ण रसायन दिया जाएगा। महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, कृपया बैठे रहिए क्योंकि इसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी अनाउंसमेंट होने वाले हैं। अगला हफ्ता जो है, अगला सप्ताह, उसमें अलग अलग महाराज लोग, आप सबको पता होगा कि यहाँ ब्यूरो मीटिंग है और करीब करीब 22 सन्यासी यहाँ आ रहे हैं, तो अगले हफ्ते में हर एक दिन अलग अलग महाराज लोग भागवतम देने वाले है। मैं अभी दोहराना चाहूंगा, 4 तारीख को कल हिज होलीनेस हनुमंत प्रेषक महाराज, 5 तारीख को हर ग्रेस प्रशांता माता जी, 6 तारीख को हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, 7 तारीख को हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, 8 तारीख को हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज और 9 तारीख को हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार हर एक दिन हमारे लिए फिस्ट है लेक्चर की, तो अलग अलग महाराजों का दिव्य संग हमें प्राप्त मिलने वाला है। ये अनाउंसमेंट स्पिरिचुअल, ये अनाउंसमेंट हम सबको पता है कि आज एक शुरू की रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और इसके लिए बसेस 11 बजे मंदिर से निकलेगी। कुछ सीट्स अवेलेबल है, आपको जो जाना चाहते हैं आप कृपया रजिस्ट्रेशन करिए वृंदा देवी इंफॉर्मेशन सेंटर में और वहां से आप 11 बजे शिरूर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। ये अनाउंसमेंट स्पिरिचुअल टैलेंट सर्च एग्जाम के तरफ से है। आज का जो बुक है बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट, ओरिएंटेशन आज ही है, और उसके प्राइजेस जो है, लास्ट वीक में जो कृष्णा बुक का ओरिएंटेशन लिया गया था उसके तीन प्राइजेस इस प्रकार है। श्याम भजन प्रभु, श्याम भजन प्रभु यहां है, वेंकटेश प्रभु और मनीषा माता जी, ये तीनों को हम विनती करते हैं कृपया आगे आइए और यस यस इधर श्याम भजन प्रभु है, ठीक है, राधे श्याम प्रभु रेवती पुत्र के प्रभु हाथ के देकर वो दे। हरि बोल। वेंकटेश प्रभु, वेंकटेश प्रभु और मनीषा माता जी है, हरि बोल। यस, ये अनाउंसमेंट वाइड्स पब्लिकेशन की ओर से है। आप सभी को पता है कि अलग अलग कारपोरेट्स में भी हमारा वॉइस की ओर से प्रीचिंग किया जाता है। तीन नए किताब हमने पब्लिश किए हैं वॉइस की ओर से, आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, स्ट्रेस टू स्माइल, वर्क वैल्यूज एंड एथिक्स। ये तीनों किताब हिज होलीनेस राधेश्याम प्रभु और आनंद पाटिल प्रभु द्वारा लिखी गई है, संचलित की गई है। तो इस प्रकार के तीन किताब है, ये बहुत ही अच्छे किताब है, स्पेसिफिक जिनको कारपोरेट में प्रीचिंग करना है उसका काफी यूटिलाइजेशन हो सकता है। और इसके बाद जो अनाउंसमेंट होगा वो देने के लिए मैं सर्वलक्षण प्रभु को कहूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। ये बुक्स बाहर स्टॉल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से परचेस कर सकते हो।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। विनती करते हैं सभी भक्त दो मिनट के लिए बैठ जाए, अपने अपने जगह में दो मिनट के लिए बैठ जाए, बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। तो इस बार हमारा ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है, इसमें हम सब मिलके टोटल 2,05,692 मतलब 2,05,692 भगवद्गीता वितरण किए। हरी बोल। एक्चुअली शुरुआत में लग रहा था कि हमारा 1,00,000 भी पहुंचेगा कि नहीं है लेकिन बाद में सब भक्तों ने बहुत ही उत्साह से ग्रंथ वितरण किए हैं, और खास करके आज रेवती पति वो बता रहे थे महाजना ये न गथा स पंथ, हमारे शिल प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने ग्रंथ वितरण का प्रोग्राम शुरू किए हैं और सारे आचार्य हम सब ग्रंथ वितरण किए हैं उससे प्रसन्न होंगे। तो इस साल पहली बार हमारे इस्कॉन पुणे के इतिहास में सारे जगत में हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रैंक 2 में आए हैं। तो वी गॉट सेकेंड रैंक इन द वर्ल्ड फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दूसरा है कि हमारे मंदिर के अध्यक्ष राधेश्याम प्रभु जी है पूरे जगत में नंबर 1 ग्रंथ श्रीमद भागवतम का वितरण करने में नंबर 1 आए हैं। प्रभु जी भागवतम के अनुसार जीवन भी बिताते हैं और भागवतम का प्रचार भी अच्छे से करते हैं और सुंदर तरीके से भागवतम का क्लास भी देते हैं और भागवतम का वितरण भी नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। हरि बोल। तो ये हो गया, पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज है। और हमारा श्री ये पूना में जो हमने ग्रंथ वितरण करते हैं, तो हर साल हम ग्रंथ वितरण के बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो गया साल भी परमपूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो बीबीटी का ट्रस्टी है, तो उन्होंने ग्रंथ वितरण के प्राइज वितरण किए थे। कल ही महाराज से महाराज मुझे कॉल किए थे कि मैं आ रहा हूँ ग्रंथ वितरण का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और महाराज बहुत खुश है। हमने बताया कि सेकंड रैंक हमें पुणे में मिला, बहुत खुश हो गए। और महाराज खुद ये 5 तारीख को आने वाले, मतलब कल नहीं परसों, 2 ही दिन बचा है, तो शाम को NVCC मंदिर में 7 बजे ये प्रोग्राम होगा और बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम रहेगा। खास करके भीमा प्रभु भी बोले कि मुझे भीमा प्रभु पर्सनली कॉल किए, सर्वलक्षण प्रभु यू गॉट सेकंड रैंक इन द वर्ल्ड। तो एक्चुअली वो बहुत सारे ऐसे डिग्निटरी से आने वाले हैं, हमें अभी पता नहीं कौन कौन रहेंगे, बहुत सारे महाराज और ये लोग रहेंगे और ग्रंथ वितरण का प्रोग्राम, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा। और सभी भक्तों को इसमें आना है। और प्राइस जो वितरण होगा इस साल, खास करके इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना समय महाराज लोगों को नहीं होता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि काउंसिलर ग्रुप के द्वारा ये प्राइज वितरण होगा, और एक काउंसिलर मतलब स्टेज में जाएंगे महाराज के साथ, एक फोटो हम क्लिक करेंगे और प्राइज काउंसिलर के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, और काउंसिलर अपने काउंसिलर्स को वितरण करेंगे। और जिन भक्तों ने 108 और 500 भगवद गीता किए हैं, 108 के लिए भी प्राइज होगा और 500 भगवद गीता के लिए प्राइज होगा। और अगर आपने 108 या 500 भगवद गीता किया है तो अपने काउंसिलर्स से या आप जिस ग्रुप से ग्रंथ वितरण किया है वो ग्रुप का लीडर से आप अपना ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत मुश्किल है उसको चेक करना। इसलिए पहले से आप चेक कीजिएगा। और भक्ति वेदांता हॉल में ये प्रोग्राम होगा और आपका नाम डिस्प्ले किया जाएगा कि किस तरीके से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका नंबर कहाँ जहाँ रहेगा, तो आप अपने काउंसिलर ग्रुप या बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीडर जिसके अंडर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया साथ में आपको बैठना होगा। तो कृपा करके सभी भक्तों को 5 तारीख को शाम को ये प्रोग्राम में अटेंड करना है, और विशेष फीस प्रसादम भी सर्व किया जाएगा। हमारे महात्मा प्रिय प्रभु वीडियो बनाने में नंबर 1 है, तो इस साल स्पेशल वीडियो भी बना है, तो वो स्पेशल वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। हरी बोल। श्रील प्रभुपाद ग्रंथ वितरण प्रोग्राम की इताय गौर प्रेमानंदी।